दौला पुस्तक दसवीं लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, कम्मट्ठजनियवेयण वहि समुत्तिर्णये जिने नमिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परोएमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चतुर्थ खंड है अपना वेदना अनुयोग द्वार, उसका अनुयोग है। और यहाँ हम दसवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 88 पर आ गए। 88 देखो, अभी यहाँ यवोमध्य के ऊपर की बात चल रही है। वहां से हमने देखा था कि यवोमध्य के ऊपर जाते हुए उपरिम विरलन, तो जो यवोमध्य का जो अवहार काल था 711/64, वो उपरिम विरलन था। दूध नीचे का विरलन आठ था। उपरिम विरलन में हमने 1422 समखंड करके दिए तो 128 आए थे। नीचे आठ का विरलन किया, दो गुणहानी का विरलन किया। यह हम समझाने के लिए आठ कहेंगे, अपन दो गुणहानियों का विरलन किया और वो दो गुणहानियों में 128 बांट दिए, तो हर एक के ऊपर 16-16 आ गए। तो अभी हमको माइनस करना है, ऊपर जाते ऊपर के गुणहानियों में माइनस करना, प्रक्षेप का प्रमाण, प्रक्षेप यानी चेंज समझो ना, वो माइनस करते जाना है। तो 16-16 हम निकाल लेंगे। ऊपर जो विरलन कर दिया है ना हमने, यानी वो 11 पूर्णांक समथिंग है, यानी उसमें हम 711/64 उसका प्रमाण था। एक एक में से हम 16-16 निकालेंगे, तो 7 बार 16 निकालेंगे तो हमें 112 मिल जाते हैं। तो 7 निशकों में से एक की वृद्धि हो जाती है, तो 7 में एक की वृद्धि होती है तो 711/64 में कितने की वृद्धि होती है, तो वृद्धि उसी में मिला देना। तो ये हमने निकाला था, उसका प्रमाण 87 पेज पर आया था, 711/56 आया था ना। ये यवोमध्य के ऊपर का 112 वाला निषेक। अब उसके सेकंड वाला, उसमें और एक 16 कम करना, यानी दो प्रक्षेप कम कर देना, यानी हम हर एक 128 में से 32 निकालेंगे। और यहाँ का निषेक भी कितना है, 96 का है, तो तीन में से निकालेंगे तो हमें एक मिलाएगा, एक निषेक एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आती बात, 32 निकाले हमने क्योंकि दो प्रक्षेप निकालना है, तो तीन में एक की वृद्धि, तो इतने में कितने की वृद्धि। इस तरह से उसका भी हमने प्रमाण कल निकाला था। हाँ, 711/40 आ गया था, 48 आया था। और बाद में हमने आगे वाला चतुर्थ निकाला था, 711/40 आया था। अब इसके बाद अभी हमें आगे बढ़ना है 88 पेज पर। यह कल का हमने जरा सोच लिया क्या था। अब आगे की गुणहानियों के प्रथम व द्वितीय निषेक के भागहारों की संदृष्टि। अभी द्वितीय गुणहानि का पहला निषेक देखो। यहाँ पहला गुणहानि का, यानी ऊपर की गुणहानि 128 से शुरू होती है और समाप्त तो होती है 80 में। दूसरी गुणहानि 64 से शुरू होती है, यानी 128 को वह आधा है, तो जहाँ लब्ध राशि आधी हुई भागार दो गुना होगा। 711/64 को दो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 711/32 आएंगे, क्योंकि दो से गुना किया तो 64 तो छेद में थे, उसमें दो का भागहार करने से 32 रह जाएंगे। यहाँ तक तो बात ख्याल में वही बात रहे के? तो द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक, प्रनियने प्रथम निषेक 711/32, द्वितीय निषेक 711 बदले 28 उन्होंने सॉल्व नहीं करते हुए डायरेक्ट संख्याएं लिख दी। पेज नंबर 88 पर दूसरी गुणहानी, यव मध्य के ऊपर की दूसरी गुणहानी, पहली गुणहानी हो गई 128, 112, 96, 80 वाली पहली गुणहानी वो हो गई। अब दूसरी गुणहानी 64 से शुरू होते हैं और वहां पक्षेप का प्रमाण भी आधा होता है, 8-8 हो जाता है। तो हम अपनी भाषा में समझेंगे ना, जैसे 711 बटे 32
इसको दो गुणा, अरे
ओरिजिनल वाला और विरलन कायम रखना है, 128 वाला विरलन कायम रखना है ना, उसका भागहार का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तीन प्रक्षेप उसमें से निकाले। पहले हमने 32-32 निकाले थे, अभी 48-48 निकालने पड़ेंगे। तो हमने कल इसका हिसाब लगाया था, जब दो प्रक्षेप दो 128 में से 48-48 निकाले तो उसमें एक निषेक बढ़ गया और 16 बच गए, यानी दो के पीछे एक पूर्णांक एक पंचमांश हो जाता है। तो 711 बटे 64 में कितने हो जाएंगे, तो हमने उसका उत्तर सोच लिया था ना, तो 711 बटे 32 ऐसा भी डायरेक्ट आता है ना,
अरे डबल कर।
जो हमने देखा था उससे डबल किया, 128 का जो अवहार था कितना था, 711 बटे 64, उसको दो गुणा करेंगे तो दूसरी गुणहानी का पहला निषेक आया 711 बटे 32। द्वितीय निषेक कितना होगा, 711 बटे 28। अब मेरी ट्रिक बताऊं आपको, 8 × 4 = 32 होते हैं, 7 × 4 = 28 हो गए, तो तृतीय निषेक 6 × 4 = 24 होगा नीचे छेद में, और चौथा निषेक 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यानी आगे के दो निषेकों को हम अपनी भाषा में कैलकुलेट करके डायरेक्ट हम पूरा हिसाब करेंगे तो भी उतना ही आने वाला है, समझ में आते हैं? क्योंकि ऊपर के लिए हमने 8 का विरलन करते थे, हम नीचे के गुणानियों में 4 का विरलन करते थे, ऊपर में 8 का विरलन कर रहे, इसे 8, 7, 6 और 5 से उसको गुणा कर दो। हाँ ये ट्रिक हमसे सुन लो, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज है। अब तीसरी गुणहानी, तीसरी गुणहानी जो 711 बटे 32 है उसका भी आधा हो जाएगा,
16
तो 711 बटे 16 बच जाएंगे। द्वितीय निषेक अभी 16 को है ना, 8 के प्रमाण से करो, 8 × 2 = 16, तो द्वितीय निषेक में 7 × 2 = 14 आएगा नीचे। तृतीय गुणहानी प्रथम निषेक, द्वितीय निषेक, त्रुगु कंटिन्यूएशन है उसमें, जैसे पहले संदृष्टि में दिखा ना द्विगुण प्रनिद्विनी, ऐसे तृतीय गुणहानि का प्रनिद्विनी, तो 711 बटे 16 और दूसरे निषेक के लिए 711 बटे 14, ये फिगर हमने नीचे की गुणहानियों में भी देखे थे जहां वो निषेक का प्रमाण उतना ही था। अब तृतीय गुणहानि का कितना निकलेगा आप बताओ हिसाब करके, हमने आपको ट्रिक बताई,
12
आपको नहीं पूछा है। हाँ ब्रह्मा, पहले निषेक के लिए 711 बटे 16, 16 कैसे आएंगे, 8 × 2, दूसरे में 7 × 2, तीसरे में
6 × 2,
तो 711 बटे 12 आ जाएंगे, और चौथे में
10,
हाँ 10 आ जाएंगे, 711 बटे 10 वो, नहीं हम आपको बता रहे हैं, हम डिराइव कर सकते हैं ना। अब चतुर्थ गुणहानि प्रथम निषेक, अभी वो पहले जो 711 बटे 16 था ना उसका आधा कर देना, तो 711 बटे 8 होता है, अब यहाँ 8 × 8 तो दूसरे के छेद में 7 ही रह जाएगा, 711 बटे 7, उसके आगे 711 बटे 6 तीसरा निषेक, और 711 बटे 5 चौथा निषेक हो जाएगा, है ना। देखो अभी पांचवी गुणहानि पहला निषेक, अभी हमने देखा था 711 बटे 8 देखा था, यहाँ तो उसका भी आधा 711 बटे 4 हुआ। द्वितीय निषेक में अभी 4, 8 का आधा है वो, तो आधा आधा कम कर देना अभी, यानी 7 का आधा, ये 8 का आधा है, वो 7 का आधा है, 7 द्वितीयांश करो, तो वहां 1422 ऊपर लिखा है और नीचे 7 लिखा है, अगर ऊपर 711 ही लिखते तो नीचे 3.5 लिखना पड़ता, 7 द्वितीयांश, यानी ऊपर 711 और नीचे 7 द्वितीयांश, तीसरे स्थान में क्या होगा, ऊपर 711 और नीचे
700.
कौन कहना चाहते हैं?
714 उसको डबल करके उसका
देखो 8 का आधा फिर 7 का आधा अभी 6 का आधा करो ना
3
आ जाएगी 5 का आधा ढाई आ जाएगी यानी वो नीचे छेद में हमने देखा 4 फिर 7 द्वितीयांश फिर 3 और 5 द्वितीयांश ये हम अपनी ओर से डिराइव कर रहे हैं बस अभी आगे बढ़ेंगे अथवा अभी अथवा कहेंगे उसका अर्थ होता है दूसरी पद्धति बता रहे अभी यहाँ संदृष्टि बदलकर समझाने के लिए वो कुछ अलग से बताएंगे बात तो यही है पद्धति यही है अब यहाँ कहते अथवा यवमध्य का भागार पूरा 3 गुणहानि प्रमाण है अब पूरा 3 गुणहानि है और वहाँ 128 आना चाहिए तो द्रव्य की भी संख्या बढ़ाकर बताएंगे तो 3 गुणहानि यानी कितनी हुई 12 गुना 128 करना पड़ेगा तो उसका प्रमाण आता है यहाँ 1536 उन्होंने संदृष्टि बदल दी क्योंकि वो अपूर्णांकों में आती थी ना अभी ये पूर्णांकों में करके बता रहे अथवा फिर से अथवा के बाद बटे 4 है 4 वो बराबर करना
4 है ना
हाँ पर ऊपर डबल किया ना हाँ ऊपर 711 रखो तो नीचे 7 द्वितीयांश आ जाएगा ख्याल में आई बात हमने अभी देखा 711 बटे 7 द्वितीयांश यहाँ हुआ था तो 711 बटे 3 आ जाएंगे और 711 बटे 5 द्वितीयांश आ जाएंगे अभी अभी हमने डिराइव किया था अभी अथवा अभी संदृष्टि बदल रहे हैं बीच वाला योग स्थान 128 का ही रखा है परंतु उसका जो अवहार काल 3 गुणहानिया से कम बताया था यह पूरा 3 गुणहानिया मान लेते हैं उसका अर्थ क्या 128 गुना 12 उतना टोटल द्रव्य मानेंगे टोटल जीवों की संख्या तो वो संदृष्टि हमें 1422 के बदले 1536 मान रहे हैं यहाँ पर तो सब द्रव्य 1536 ऐसी मन में कल्पना करके अवहार काल की प्ररूपणा करते हैं यथा यवमध्य की यानी यवमध्य का अवहार काल कितना है 3 गुणहानिया अवहार काल का अर्थ क्या है टोटल द्रव्य को जिस संख्या से भाग देने पर 128 आते हैं उसको कहेंगे 128 का वो अवहार काल है अब कहते हैं यवमध्य की अधस्तन अन्योन्य अभ्यस्य राशि से यवमध्य की अन्योन्य अभ्यस्य राशि हमारी कितनी थी 8 थी 3 गुणहानियों को अर्थात 3 गुणहानियों के काल को गुणित करने पर जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों का भागहार आता है तो 3 गुणहानिया 12 है उसको नीचे के अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 है उससे हम गुणा करेंगे तो 96 होता है यानी वो भागहार का प्रमाण कितना हुआ 96 उसका सब द्रव्य में भाग देने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण आता है यही उसका अर्थ होता है ना यानी पहले अवार देखो 1536 हमने क्या किया 128 अभी अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 है यानी उतनी बार आधा 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 हुआ 3 बार आधा आधा हुआ तो डायरेक्ट हमने 8 की संख्या निकली यानी अभी यहाँ जघन्य योग स्थान है 128 का 8वां भाग प्रमाण है यानी लब्ध राशि हमें 8वीं भाग चाहिए तो यहाँ अवहार 8 गुणा करना पड़ेगा तो 128 का अवहार कितना था 12 था 3 गुणा नहीं 12 था अब यहाँ उससे 8 गुणा करो 96 हो जाएगा इसका अर्थ है ये हो जाता है यानी वो नीचे की गुणहानी और फिर उसके बाद समझाए उन्होंने इस प्रकार पूर्व विधान के अनुसार यवमध्य के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए तो दूसरा जो स्थान होगा उसमें प्रक्षेप 4 है वो पद्धति वही है केवल यहाँ पूर्णांकों में उन्होंने कैलकुलेट किया है यानी फिर हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वह हमने 711 बटे 8 करके वो सारा कैलकुलेट किया था नीचे के योग स्थान के लिए है ना तो वैसा ही यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो उन्होंने छोड़ दिया अब ऊपर की बात करेंगे वही ये नई संदृष्टि लेकर ऊपर की गुनाहियों की बात करते हैं। तीन गुनाहियों का विरलन कर, मैंने 12 का विरलन किया। पहले हमारे हमने संदृष्टि में वो 711/64 का विरलन किया था, सब द्रव्य को समखंड करके देने पर, यानी 1536 को समखंड करने देने पर विरलन के एक अंक के प्रति यव मध्य का प्रमाण प्राप्त होता है, 128 मिले। वही की वही पद्धति है, यहाँ केवल फिगर्स बदल दिए। मैंने यहाँ 12 का विरलन किया, पूर्णांकों में ले लिया और हरेक के ऊपर 128 आ गए। अभी ऊपर के गुणहानियों के लिए क्या करना है, 8 का विरलन करना था, 2 गुणहानियों का विरलन करना था, फिर इसके नीचे 2 गुणहानियों का विरलन कर यवो मध्य को 128 को समखंड कर देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण होता है, 16 वहां आया, 128 नीचे का विरलन 8 में विभाजित कर दिया तो उसका प्रमाण कितना आया, 16। उसको ऊपरी विरलन के प्रत्येक यव मध्यों में से कम करने पर, क्योंकि ऊपर में ये एक एक प्रक्षेप घटेगा ना, अभी वहां का प्रक्षेप 16 है, ख्याल में आती बात, ऊपर के गुणानियों की बात है। अभी हमको 112 वाला निषेक चाहिए तो 128 से 112 कम है तो भागहार में कुछ बढ़ाना चाहिए, तो हमने 128 में से 16 निकाले, वहां 112 में रह गए, दूसरे में से 16 निकाले, वहां 112 रह गए, तीसरे में से, चौथे में से, 7 में से निकाले, तो 7 में से 16 निकाले तो एक की वृद्धि हो गई। जैसे हमने पहले किया था वैसे यहाँ पर है, देखो तो कहते इसके नीचे 2 गुणहानियों का विरलन कर यव मध्य को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है, 8 बार 16 मिलते हमको। उसको उपरिम विरलन के प्रत्येक यव मध्यों में से कम करने पर शेष 3 गुणहानि मात्र द्वितीय निषेक रहते हैं, यानी 12 के 12 निषेकों में से हमने हरेक में से 16 निकाल लिए, तो 12 के तो 12, 112 के 12 निषेक तो रह गए और हमको एक्स्ट्रा क्या मिला, 16 × 12 एक्स्ट्रा रह गया, है ना, 12 बार हमने 16 निकाले तो उसमें नए प्रक्षेप कितने हो जाएंगे। फिर से हमने 128 12 बार लिखा था, हर 128 में हमने 16 निकाले तो हमें कितने एक्स्ट्रा मिले, 12 बार 16 मिले, उसमें से 7 बार 16 का एक ग्रुप करेंगे तो उसमें से एक निषेक मिलेगा। फिर से ऊपर का विरलन कितने का था, 12 का था, ये 12 बार, और हरेक के ऊपर कितना था, 128 था, हमने हरेक में से 16 निकाल लिए तो ये 16 12 बार रहेगी हमारे पास, उसमें 7 बार 16 लेते हैं तो उसका एक निषेक कितने का, 112 का होता है, 112 का एक निषेक, तो हमारे पास कितने हैं, 12 बार है तो 12 में कितने मिलेंगे, 7 में एक एक्स्ट्रा हो जाता है निषेक तो 12 में कितने हो गए, तो एक निषेक लेना इसमें 12/7, ये एक्स्ट्रा हो गए, है ना, यानी 7 × 7 5/7 इतने मिले एक्स्ट्रा, ऐसे 7 यानी 7 प्रक्षेप हमको मिले, इसको 16 के बदले 7 प्रक्षेपों का एक निषेक बना तो 12 प्रक्षेपों का कितने निषेक बनेंगे, तो एक तो पूरा मरेगा और 5/7 रह जाएगी, इतने एक्स्ट्रा हो जाएगी ये वृद्धि को। हाँ, इतने निषेक मिल जाएंगे एक्स्ट्रा हमको, यानी वो ओरिजिनल 12 था ना, ओरिजिनल 12 था, 12 निषेक तो निकाल के 12 रह गए थे, उसमें इतने एक्स्ट्रा हो गए, 1.5/7, तो अभी नया भागहार कितना हो गया, 13.5/7, ये समझ में आई बात, एक की वृद्धि हुई तो 12 में एक बढ़ा देना, 13 हो जाएगा और 5/7, यानी द्वितीय निषेक 112 है, उसका अवहार काल कितना मिला? 128 का अवहार काल 12 था, इसका 13.5 सप्तमांश ये हो गया। देखो अभी इसको पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 88 पर नीचे से तीसरी लाइन, यानी ऊपर का जो 128 हमने दिया था ना, और नीचे 16-16 दिए थे आठ में, तो जो हर आठ के ऊपर 16-16 थे, वो 16 संख्या को ऊपरी विरलन के प्रत्येक एवं मध्य में से कम करने पर, प्रत्येक एवं मध्य ने प्रत्येक 128 में से हमने 16-16 निकाले, शेष तीन गुणानी मात्र द्वितीय निषेक रहते हैं। यानी द्वितीय निषेक कितने रह गए? 12 रह गए ना, तीन गुणानी 12 द्वितीय निषेक बने। द्वितीय निषेक की वैल्यू है 112 की, क्योंकि हमने 128 में से 16-16 निकाल लिए, तो 12 112 रह गए, यानी 12 निषेक मिले हमको। तीन गुणानी मात्र प्रक्षेपों में से, यानी 12 प्रक्षेप हमको मिले, क्योंकि हर एक 128 में से हमने एक एक प्रक्षेप निकाल रहा था, तो 12 प्रक्षेपों में से एक कम दो गुणिया मात्र, 12 तीन गुणानी मात्र प्रक्षेप, यानी 12 प्रक्षेप, यानी 12 प्रक्षेपों में से एक कम दो गुणानी यानी 7 मात्र प्रक्षेपों के मिलाने पर एक प्रकृत निषेक होता है। प्रकृत निषेक हमारा 112 का है, जिसके हम कंसीडर कर रहे हैं, और एक हमने 7 बार 16 7 12 उधर से एक निषेक मिलाने के लिए 16 का एक प्रक्षेप, तो 7 प्रक्षेपों का कितने हमने 16 निकाले 7 बार निकाले, तो हमें एक पूरा निषेक मिल जाता है 16 7 12 उधर से, है ना, तो हमको एक निषेक मिला, यानी एक की वृद्धि हुई। पहला कितने थे? 12 थे, उसमें एक मिला है 13 हो गया, और शेष एक अधिक गुणहानी मात्र प्रक्षेप है, 5 प्रक्षेप शेष रहे। 12 में से 7 मिले, 7 का एक निषेक बना दिया, 5 प्रक्षेप बाकी रह गए, पर उनसे प्रकृत निषेक नहीं प्राप्त होता, परंतु 5 में से 112 नहीं बनते, कुछ शेष वो अपूर्णांकों में आ जाएगी बात, अतः भागहार में मिलाने के लिए अन्य एक अंक का प्रक्षेप नहीं है। यानी हमने जैसे 12 में एक मिलाकर 13 किया, ऐसे अभी पूरा नहीं है, 5 सप्तमांश ही बाकी रहे, 5 12 अंश ही नहीं, 5 सप्तमांश। हाँ, समाधान, 2 कम 1 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर दूसरे अंक का प्रक्षेप होता है। यानी यदि यहाँ शंका, तो फिर इतर कितने प्रक्षेपों के होने पर दूसरे अंक का प्रक्षेप होता है? यानी हमें अगर 5 प्रक्षेप बचे हैं और हमको कितने डालने पड़ते, तो और 2 तो प्रक्षेप डालने पड़ते हैं, तो वो 2 प्रक्षेपों को क्या कैसे, 2 कम 1 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर। देखो यहाँ गुणहानि का प्रमाण यहाँ तो हमें फिट बैठता है हमारे उदाहरण में, और 2 प्रक्षेप डालो, परंतु प्रक्षेपों की वैल्यू और गुणहानि की वैल्यू इसमें बहुत डिफरेंस है, संदृष्टि में उल्टा पुल्टा हो रहा है। देखो यहाँ हमारी गुणहानि 4 की है और प्रक्षेप 16 का है, एक्चुअल में यथार्थ में क्या है, गुणहानि है श्रेणी का असंख्यात्व भाग, और प्रक्षेप की वैल्यू होगी कुछ पल्लियों के असंख्यात्व भाग प्रमाण, समझ में आते हैं, इसलिए 2 प्रक्षेप, प्रक्षेपों की भाषा में बात करेंगे, यहाँ की फिगर्स में कैलकुलेट मत करो, यहाँ वो फिट बैठता है क्योंकि हमारी गुणहानि 4 है, इसलिए 2 प्रक्षेप की संख्या भी उतनी है, परंतु उसका नियम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 प्रक्षेप हमें कम पड़ रहे, बस इतनी कहेंगे, यथार्थ में प्रक्षेप की वैल्यू कम है, गुणहानि तो असंख्यातों की है, बहुत बड़ा असंख्यात है वो, इसलिए हमारे उदाहरण में वो फिट बैठता है, 2 कम 2 क्या कहे, आधे 2 बार, अब 2 प्रक्षेप डाल दो, ऐसे हमने डायरेक्ट कह दिया।
प्रक्षेप का प्रमाण द्रव्य श्रेणी का असंख्यात प्रभाग है, पल्य का असंख्यात प्रभाग, गुणानि टोटल पल्य का असंख्यात प्रभाग है, और टोटल जीवों की संख्या द्रव्य श्रेणी का असंख्यात प्रभाग है, तो श्रेणी का असंख्यात प्रभाग डिवाइडेड बाय पल्य का असंख्यात प्रभाग, तो एक एक प्रक्षेप आ जाएगा,
वो भी श्रेणी का असंख्यात्व
होगा। मेरे हिसाब से वो भी
एक एक मिनट, परंतु यहाँ उल्टा पुल्टा हो रहा है, इतना बड़ा नहीं होगा।
इसीलिए मैंने कल बोला था ना, ये श्रेणी में देखते को जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना।
इसीलिए वो सब जगह श्रेणी का असंख्यात्व भाग हो जाता है, इसलिए ये कथन जो है ना 63 में, गुणहानि शाला का है पल्य का संख्यात्व, गुणहानि का प्रमाण पल्य का संख्यात्व,
और बाकी सभी श्रेणी का संख्यात्व भाग है।
और प्रक्षेप,
प्रक्षेप मेरे को यहाँ पे बताया नहीं है, कल मैं पूछने वाला था कि प्रक्षेप भी श्रेणी का संख्यात्व हो जाएगा ना।
प्रक्षेप अभी 4-16 का प्रक्षेप,
क्योंकि श्रेणी बहुत बड़ी संख्या है, पल्य बहुत
छोटा है,
तो वो भी श्रेणी का संख्यात्व भागी हो जाएगा ना। होगा
गुणहानि शब्द नाना गुणहानि या पल्ल की असंख्या भाग प्रमाण है। एक गुणहानि कितनी है?
एक गुणहानि पल्ल का असंख्या हो जाएगी।
नाना गुणहानि 8 है और एक गुणहानि 4 हो गई,
वो भी पल्ल का असंख्या हो जाएगी।
एक मिनट, नाना गुणहानि नहीं, नहीं वो तो है ना, नाना गुणहानियां होती है।
एक गुणहानि शरीर का संख्या
65।
एक गुणहानि भी श्रेणी का संख्या तो भागे,
हाँ
तो प्रक्षेप कितना हो जाएगा?
एक मिनट,
नाना गुणहानि पल्य का संख्या तो भाग, एक गुणहानि श्रेणी का
संख्या, वहाँ 65 पेज पर, एक कम योगस्थान के काल को समस्त योगस्थान के काल से गुणित करके आधा कर, फिर अंगुल के असंख्यात भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके, उस योगस्थान को काल से गुणित करके जघन्य योगस्थान के जघन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर,
स्पर्धक शलाकाओं तो श्रेणी का संख्या भाग है।
यानी वो संदृष्टि में वो बैठता नहीं है, कैसा भी आप ले लो तो।
पर ये प्रक्षेप भी श्रेणी का असंख्यात्व भाग होगा कि वो मेरा क्वेश्चन था कल, मेरे को इससे लगा था क्योंकि ये भी श्रेणी का असंख्यात्व,
प्रक्षेप यानी प्रति निषेध कितने बढ़ते हैं, वृद्धि का प्रमाण,
वो भी श्रेणी का असंख्यात्व भाग हो जाएगा ना।
यहाँ लिखे है असंख्या तो अपने असंख्यात जगत श्रेणियां होती है, पेज नंबर 66।
प्रक्षेप का प्रमाण
जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को जगत श्रेणी के असंख्यात जितना लब्ध आवे उतना है। देखो चौथी लाइन में बताऊ, लास्ट दो लाइन मुझे देखाना है। अतः इसका त्रस जीव राशि में भाग देने पर श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र जगत श्रेणिया जीव प्रक्षेप प्रमाण उत्पन्न होती है। इस प्रकार जीव प्रक्षेप प्रमाण की प्ररूपना की,
तो जीव प्रक्षेप श्रेणी के असंख्यात भाग
इतने जगत श्रेणिया,
नहीं नहीं मैं समझा नहीं,
देखो हर एक निषेक में कितने जीव है,
हर एक निषेक में श्रेणी की असंख्या
असंख्या श्रेणी,
हाँ असंख्या श्रेणी,
प्रक्षेप भी असंख्या श्रेणी है, ये कह रहे पेज नंबर 66 ऊपर से पांचवी लाइन,
हाँ बराबर है, श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र जगत श्रेणिया जीव प्रक्षेप प्रमाण उत्पन्न होती है,
इसका प्रक्षेप की प्ररूप न हो है ना।
तो प्रक्षेप भी यहाँ पे कितना बड़ा है,
हाँ वही तो, इसीलिए उसको इमेजिन करने की कोशिश यहाँ नहीं है। अभी यहाँ जो प्रक्षेप और गुणहानि कह दिया है उन्होंने, प्रक्षेप भी कहा और गुणहानि भी कही, तो उसमें हमने डायरेक्ट उसका प्रमाण मत डालो इसमें। यहाँ तो हम केवल दो कम कर रहे
हैं,
दो कम तो आधी गुनाहानी हो जाती है, दो कम गुनाहानी तो आधी गुनाहानी होती है, परंतु वहाँ वो रूल फिट नहीं होता है।
बहुत बड़ी संख्या में
ये रूल नहीं होगा, वहाँ तो दो ही कम कर देना है, दो प्रक्षेप ही कम करो, क्योंकि उसकी संदृष्टि में वो फिट होने की संभावना नहीं है, केवल उसमें से दो प्रक्षेप कम करना है। देखो अभी यहाँ अभी हमने जो पढ़ा ना, वहाँ फिर पढ़ते यहाँ समाधान था 89 पर, उन्होंने क्या किया, सात प्रक्षेपों से एक निषेक बना और आगे पांच प्रक्षेप बाकी है, तो उसमें दो प्रक्षेप कम पड़े हैं। तो यहाँ कहते हैं इतर कितने प्रक्षेपों के होने पर दूसरे अंक का प्रक्षेप होता है, तो दो कम एक गुणहानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर, यानी हमारी भाषा में और दो प्रक्षेप होने पर, हमारी गुणहानि चार है, उसमें से दो कम कर दो तो दो प्रक्षेप मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी एक एक गुणहानि में चार ही प्रक्षेप आते हैं। समझ में आई ना बात ये? दूसरे अंक का प्रक्षेप होता है, पर हमारे इतने है ही नहीं है, दो कम पड़ते हैं, इस कारण एक कम दो गुणहानियों से यानी सात से, एक अधिक गुणहानी यानी पांच को, वहां फिगर्स लिखो तो सब आसान हो जाएगा, अपवर्तित करके यानी पांच सप्तमांश कहेंगे, जो लब्ध आवे उतना अधिक एक अंक, उतना अधिक एक अंक यानी एक पूर्णांक पांच सप्तमांश। इनकी भाषा समझने में जरा अटपटा होता है, यानी हमारा ओरिजिनल आभार कितना था, 128 का 12 था, उसमें कितना मिलेंगे, एक पूर्णांक पांच सप्तमोश मिलाएंगे, नया आभार क्या होगा, 13 पूर्णांक पांच सप्तमोश हो जाएगा। ये समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा देखो, सात में हमको 112 का एक निषेक मिला और आगे दो प्रक्षेप कम कर दिए, पांच सप्तमोश मिले, पूरा एक नहीं मिला, तो हमको एक एक्स्ट्रा मिला और पांच सप्तमोश एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल कितने हुए, 12 प्लस एक पूर्णांक पांच सप्तमांश,
13 पूर्णांक पांच
सप्तमांश। तो उतना अधिक एक अंक का प्रक्षेप, उतना अधिक यानी पांच सप्तमांश अधिक एक, यानी हमारी भाषा में एक पूर्णांक पांच सप्तमांश, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वही विशेषार्थ में फिर दोबारा बता रहे, यहाँ यवो मध्य का भागहार तीन गुणहानियों के काल प्रमाण, यव मध्य का भागहार कितना देखा था हमने,
तीन
गुणहानि है, 12 प्रमाण है, यव मध्य कितना है हमारा,
128 बराबर ना?
हाँ देखो, यव मध्य हमारा 128 है, उसका भागहार यानी जिसको हम आभार कहते हैं, उसका भागहार यानी जिस संख्या से 1536 से भाग देने पर 128 आते हैं, उसको कहेंगे यवो मध्य का भागहार। तीन गुणहानियों के काल प्रमाण यानी 12 है, और सब द्रव्य 1536 प्रमाण निश्चित करके, ये तो हमने सभी फिगर्स मान लिए हैं, अन्य निषेकों का भागहार प्राप्त किया है। यवो मध्य का तो बताया उन्होंने तीन है, अभी उसके नेक्स्ट उसके है 112 वाला निषेक है, उसकी बात अभी कर रहे हैं। यवो मध्य का प्रमाण 128 है और उसके पास के द्वितीय निषेक का प्रमाण 112 है। यदि 1536 में 12 का भाग देने से यवो मध्य का प्रमाण 128 प्राप्त होता है, तो 1536 में कितने का भाग देने से द्वितीय निषेक 112 प्राप्त होगा, इसी बात को यहाँ गणित प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करके बतलाया है। डायरेक्ट हम 1536 को 112 से भाग देते तो वही उत्तर आने वाला था, इस विधि से हमने वो भागहार में कितना वृद्धि करना उसका हिसाब निकाला है। इस विधि से द्वितीय निषेक 112 का भागहार 96/7 प्राप्त हो जाता है, वही है ना, 96/7 का अर्थ क्या होता है, 13 पूर्णांक 5 सप्तमांश, सात के साथ दो रहेगी 26, सात्विक 21 और 5 सप्तमांश। समझ में आई बात? इसका भाग 1536 में देने पर द्वितीय निषेक 112 प्राप्त होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इसी बात को उन्होंने डायरेक्ट 1536 को 112 से भाग देके बता दिया। अब ये विधि से लाने की पद्धति कह रहे हैं, इसी बात को मूल के अनुसार उदाहरण द्वारा दिखलाते हैं। अब ये उदाहरण, पहले हम उपरिम विरलन करते थे, फिर अधस्तन, उन्होंने अधस्तन पहले बतलाया है। तो उपरिम विरलन हम कैसे करते थे, 3 गुना यानी 12 बार 128 लिखा, एक एक लिखा 12 बार, हर एक के ऊपर 128 128, ये उपरिम विरलन हुआ। नीचे विरलन कितने का करना है, 2 गुना यानी 8 का करना, और हर एक के ऊपर 128 देना, तो हर एक के ऊपर 16 16 आ जाएंगे। ये 16 हमारा प्रक्षेप का प्रमाण है। अब इसको क्या करना, उपरिम विरलन में से हर एक 128 में से हम 16 16 निकालते चले जाएंगे, तो 16 निकालेंगे तो बचेगा क्या, 112 बचेंगे। हमें 112 का ही निषेक चाहिए, पर हर एक में से 16 निकाले तो 12 बार 16 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो उसमें से 7 बार 16 लेते हैं तो उसका एक पूरा 112 का निषेक हुआ, पहले 12 और एक 13 हो जाएगा निषेक, और बचे कितने, 5 प्रक्षेप बचे,
5 सप्तमांश,
परंतु 7 के होने में 2 प्रक्षेप कम पड़ेगा, इसलिए 5 सप्तमांश ही लिखेंगे हम वहां पर। तो यहाँ उपरी अधस्तन विरलन 8 बार एक एक लिख के हर एक के ऊपर 16 16 लिखे, यहाँ एक प्रक्षेप का प्रमाण 16 है। नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रही हूँ, इसे उपरिम विरलन में स्थित, जो उपरिम विरलन में 128 128 है ना, प्रत्येक संख्या में से कम कर देने पर 3 गुनहानी मात्र द्वितीय निषेक प्राप्त होते। 12 बार 128 थे, 12 बार हर एक में से 16 16 निकाले तो 12 बार 112 वाले निषेक रह जाएंगे, और 3 गुनहानी मात्र प्रक्षेप शेष रहते हैं।
ये तो 5/7 प्रक्षेप शेष रहते हैं।
3 गुनहानी मात्र प्रक्षेप शेष रहे, टोटल 12 बार 16 रहे कि नहीं?
तो 3 गुनहानी प्रक्षेप शेष रहे, तो 3 गुनहानी प्रमाण प्रक्षेप शेष।
आप आधा ही पढ़ रहे हैं, निकालो इधर, फिर से पढ़ो, 89 पेज नीचे का। प्रक्षेप का प्रमाण 16 है, कहाँ से निकाला,
तो 12
ऊपर के हर 12 में से,
16
12 के हर 128 में से निकाले तो वहाँ कितने रहे, 12 12 बार 16 रहे ना,
12 बार 16 रहे
बराबर। तो द्वितीय निषेक कितने कितने प्राप्त हुए हमें, 12। 3 गुनहानी मात्र द्वितीय निषेक प्राप्त होते ने 12 प्राप्त हुए हैं। अभी हमने उसमें से 7 कहाँ निकाले,
बराबर है मेरे पढ़ाने,
और 3 गुनहानी मात्र प्रक्षेप शेष रहे, यानी 16 16 वाले 12 प्रक्षेप शेष रहे, ये उसका अर्थ होता है। इनमें से 7 प्रक्षेपों का एक निषेक होता है, क्योंकि 7 बार 16 लेने से हमको 112 का एक निषेक मिलता है, तथा शेष 5 प्रक्षेप रहते हैं, इसलिए यहाँ द्वितीय निषेक का द्रव्य लाने के लिए 13.5 सप्तमांश लिया गया है। उसका आवाहार काल कितना है, 13 पूर्णांक, तेजल ख्याल में आता है, नहीं आता है तो फिर समझो, हमारी पद्धति वही है। पहले हमने 128 12 बार लिखा और नीचे 8 का विरलन करके वो 128 उसमें बांटा तो उसकी वैल्यू 16 आती है, ऊपर से लेकर दिया ऐसा मत सोचो, वहाँ 16 16 है बस। अब क्या करना, हर 128 में से 16 माइनस करते जाओ तो 12 निषेक तो 112 के बने वहाँ पर, और एक्स्ट्रा मटेरियल कितना बाकी रहा, 16 को एक प्रक्षेप कहो, 12 प्रक्षेप शेष रहे, तो 112 का एक निषेक बनाने के लिए कि हमें यहाँ कितने प्रक्षेप की आवश्यकता है, 7 की, सो 7 प्रक्षेपों में एक पूरा निषेक बना, तो ओरिजिनली 12 निषेक बने थे, यहाँ 7 प्रक्षेपों का और एक निषेक बना तो 13 हो गए, प्रक्षेप कितने बाकी रहे, 5। तो एक्स्ट्रा कितना है, 5 सप्तमांश, 2 प्रक्षेप कम पड़े, अगर 2 होते तो हम 13 के बदले 14 कहते, ये यहाँ कह रहे हैं। अब तृतीय निषेक के प्रमाण से भाजित करने पर तीसरा निषेक कितना, 112 में से और 16 घटा दो, वहां का निषेक कितना है
96
वाला, 96 वाला। तृतीय निषेक के प्रमाण से भाजित करने पर डायरेक्ट भी हम 96 के भाग देते हैं तो उसके हमको भागहार का प्रमाण मिल जाता। तो तृतीय निषेक के प्रमाण से भाजित करने पर भागहार में कितने प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं इसका विचार करते हैं। अब तीन गुणहानि प्रमाण लंबे, वही ऊपरी विरलन वही है, यानी 12 को विरलन करना, और यवमध्य प्रमाण चौड़े क्षेत्र में से, चौड़ा क्षेत्र है ने, वही हर एक के ऊपर 128 दिए, यानी 12 गुना 128 हुआ ना, उसको क्षेत्र में से कह रहे हैं। यानी अगर हम इमेजिन करते हैं तो 128 गुना 12 है ना, तो हम कहेंगे ये 128 है और ये 12 है, क्षेत्र उसी को भी कहते ना, क्षेत्र में भी बताया जा सकता है उसको, क्योंकि उसके 128 गुना 12 1536 हमको आने चाहिए इस क्षेत्र में से। कहाँ गया, हाँ, चौड़े क्षेत्र में से दो प्रक्षेप प्रमाण चौड़े और तीन गुणहानि प्रमाण लंबे क्षेत्र को उपरिम भाग की ओर से छील कर पृथक कर, अभी ये क्षेत्र में समझा रहे, क्या कहेंगे हम, चौरस करना है कैसा, ये 128 वर्टिकल लाइन करेंगे और 12 की हम हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, तो ये 128 बाय 12 ये हमारे पास क्षेत्र है, कपड़ा है समझो ना ऐसा, तो उस ऊपर हमको कितने का निषेक चाहिए 96 वाला, तो 96 वाला बाकी रखे कितना बचेगा 32 बचेगा, क्योंकि 128 में से तो हमने दो प्रक्षेप की वैल्यू होती 32, दो प्रक्षेप कम कर दिए 128 में से, दो प्रक्षेप कम कर दिए, तो ये 32 वाला ये पीस हमको निकाला अलग से, तो ये 96/12 रह गया यहाँ पर, 32 का पूरा हमने पीस निकाल दिया। अभी आगे देखो, शेष तृतीय निषेक प्रमाण चौड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है निकाली हुई फाली को, ये जो फाड़ कर निकालना उसको हमने फाली कहा, एक प्रक्षेप की चौड़ाई से फाड़कर लंबाई में जोड़ देने पर, अब ये 32 को भी ऐसा फाड़ो, ये तीन गुना नहीं है यहाँ पर, और उसको इसको निकाल कर यहाँ जोड़ दो, ये केवल हमने वो फाली को लंबा कर दिया, यानी ऐसा 16 हुआ और ऐसा 12 हुआ, तीन गुना नहीं था तो 6 गुणहानी प्रमाण लंबा हुआ और एक प्रक्षेप प्रमाण चौड़ा हुआ। तो कहते निकाली हुई फाली को एक प्रक्षेप की चौड़ाई से फाड़कर लंबाई में जोड़ देने पर एक प्रक्षेप प्रमाण चौड़ा और 6 गुणहानि प्रमाण लंबा क्षेत्र होता है, ये समझो ना, ये 12 था 32 × 12 था, उसमें 16 कर दिए, दो पीसेस किए और वो एक के आगे एक जोड़ दिए जैसे हमने यहाँ बताया, तो कैसे होगा, अभी ये 16 होगा
16 × 12
और ये आगे 24 हो जाएगा, 12 का पीस था उसमें और एक 12 का 16 × 12 का एक पीस और जोड़ दिया, तो लंबी पट्टी बना दी हमने, यानी वो 16 × 12 हो गया, ये इधर ऊपर था ना 16 और 16 32 थे, उसके दो पीसेस बनाए और ऐसे जोड़ दिए, अभी नीचे कुछ नहीं है, बस ये पट्टी है इतनी बढ़ाई, अब केवल वो ये जो
छह गुणा नहीं प्रमाण हो जाता है,
तो ये हमको इतना मिला बस। हाँ, ये चार गुना तीन गुनाहानी यानी 12 थी और तीन गुनाहानी यानी 12 और बढ़े तो 24 हुआ ना। ये 16 विड्थ है और लंबाई 12 थी तो उसमें और एक लंबाई जुड़ गई तो 16 गुना 12 था, 16 गुना 24 हो गया, क्षेत्रफल उतना ही रहा।
16 गुना 6 हो जाएगी ना,
6 गुनाहानी है
और यानी
एक गुनाहानी 4 की है। समझ में आती है, 12 कहो या 3 गुनाहानी कहो एक ही बात है, यानी 32 गुना 3 गुनाहानी क्षेत्र था, उसमें 32 के 2 पीस किए, 16 गुना 3 गुनाहानी 16 गुना 3 गुनाहानी, तो एक लंबे लाइन में लिखा तो 16 गुना 6 गुनाहानी हो जाएगी। देखो लंबा क्षेत्र होता है, यहाँ दो कम दो गुणहानि मात्र प्रक्षेपों की एक प्रकृत गोपुच्छा होती है। अभी 96 की एक गोपुच्छा के लिए क्या करना पड़ता है, दो कम दो गुणहानि,
दो दो हो जाएगा।
अभी इसमें से
दो कम दो गुणहानि तो 8 में से 2 निकालना तो 6 हो जाएगा।
हाँ 6 गुणहानि, सॉरी 6 गुणहानियां, क्या कहा, 16 होता है ना,
दो कम दो गुणहानी तो 6 हो जाएगा,
6 गुणहानी नहीं,
6 कम दो गुणहानी,
दो कम दो गुणहानी मात्र प्रक्षेप,
हाँ।
यानी 6 प्रक्षेप, 6 प्रक्षेपों की एक प्रकृत गोपुच्छा होती है, 6 गुणहानियों की नहीं, 6 प्रक्षेपों की
एक गुणहानी, अरे एक प्रक्षेप पात्र, अरे एक का निषेक पात्र रत्न होगी।
देखो फिर से,
16
यहाँ दो कम दो गुणहानी यानी 6 प्रक्षेप, 16 का एक प्रक्षेप, ऐसे 6 प्रक्षेप चाहिए,
तो 96
एक प्रकृत गोपुच्छा होती है ना, इसलिए प्रकृत हमारी 96 की गोपुच्छा, हमारा विषय भी 96 की गोपुच्छा है, वो निषेक की बात चल रही है, 96 वाले निषेक की चर्चा चल रही है, हमने 128 और इंटू 12 ये वाला है, हमारे पास एक क्षेत्र था चौकोर, कपड़ा था कहो कुछ था, उसमें से 96 गुना 12 रखा और ऊपर से 32 गुना 12 वाला पीस फाड़ कर निकाला, 32 गुना 12 था ना, तो उसका वो 32 के 16 गुना 12 16 गुना 12 दो पीसेस किए, एक के आगे एक जोड़ दिए, तो अभी उसका प्रमाण कैसे हो गया, प्रक्षेप प्रमाण एक बाजू हो गई और ये उनके 6 गुणहानियां मिली। तो यहाँ तो 6 प्रक्षेप अधिक भागहार में मिलाने के लिए 3 प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। 6 प्रक्षेप अधिक भागहार में, हाँ
16
यानी यहाँ एक गुणहानी 4 की है, दूसरी गुणहानी 8 की है, उसमें 2 यानी 6 हो जाएगी, यानी 16 ऐसा लिया, एक पीस हो जाएगा, एक उसमें से हमको 96 मिल जाएगा, ऐसा 16 है तो 16 6 बार लिया तो हमको 96 का एक मिल गया, एक प्रक्षेप मिला, तो इसमें कितने प्रक्षेप मिलेंगे हमको, इसे 16 के 6 प्रक्षेप लिए तो हमको एक निषेक मिला, 16 के दूसरे 6 प्रक्षेप, दूसरा निषेक मिलेगा, इस तरह से
ये 4 निषेक मिल जाएगा ना, 16 इंटू 6 4 बार हो जाएगा ना, क्योंकि 24 इंटू 16
है, यहाँ 16 है और यहाँ 24 है, और हमको 6 में एक मिलता है, दूसरे 6 में इस
तो
तरह से, परंतु यहाँ हमको आधी गुणहानि प्रमाण, हमारे 2 प्रक्षेप है, यथार्थ में यह नहीं लागू होता, इसलिए वहाँ 2 कम लेना, यही मैं कहना चाहती थी कि यहाँ हमारे आधी गुणहानि इज इक्वल टू 2 प्रक्षेप होता है, परंतु यथार्थ में गुणहानि में से केवल 2 प्रक्षेप कम कर देना है, संदृष्टि में हमको डायरेक्ट हम इसको 4 करते हैं, उन्हें डिफरेंस पड़ेगा, वहां पर एग्जैक्ट समान नहीं है जो हमने फिगर्स लिए हैं, क्योंकि हमें 2 कम करते तो हमारी आधी गुणहानि होती है, तो यहाँ 1.5 गुणहानि 1.5 गुणहानि 3 गुणहानि और ये हमारे छह गुणानियां मिले उसमें से हमको इतने प्रक्षेप मिल जाते हैं, तो डायरेक्ट हम उसको यहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ का निकाल कर हमने इस तरह से जोड़ दिया इसको, वही बात हुई ना, यानी गुणानियां और प्रक्षेपों को केवल वो कितने प्रक्षेप कम करना इसी हिसाब में हम सोचो। हमारी इसमें तो हम डायरेक्ट उसका उत्तर निकाल सकते हैं। यह कहते देखो, यहाँ दो कम दो गुणहानी मात्र प्रक्षेपों की, यानी प्रक्षेप कितने लेना, गुणहानी में दो कम इतने प्रक्षेप लेना, उसमें एक प्रकृत गोपुच्छा होती है। इसलिए छह प्रक्षेप अधिक भागहार में मिलाने के लिए तीन प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। हमारा हाँ, आठ प्रक्षेप कम दो गुणहानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर भागहार में मिलाने के लिए चौथा प्रक्षेप अंक प्राप्त होता है, पर इतना है नहीं। इसलिए भागहार में मिलाने के लिए एक का असंख्यात्वा भाग अधिक तीन अंक प्राप्त प्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होता है, यानी तीन पूर्णांक एक का असंख्यात्वा भाग, यानी क्योंकि वो गुणहानि और प्रक्षेप में जो कुछ डिफरेंस है वो इसलिए उन्होंने इस तरह से उसका स्टेटमेंट दिया है। हमारी इसमें तो समझना बहुत आसान है, ये इमेजिन करना आसान है जो हम यहाँ क्षेत्र बताते हैं। हमने 32 वाला एक पिस्ट वहां से फाड़ दिया, तो ये 32 और 12 उस प्रमाण है, तो 32 और 12 प्रमाण है, तो उसको 96 प्रमाण करने के लिए क्या होगा,
32 × 12 डिवाइडेड बाय 6 ना?
नहीं, उन्होंने 16 के दो पीसेस बनाए ना, ये ऐसा हुआ। हाँ। अभी हमारे पास 16 और ऐसा कितना है,
24 प्रक्षेप है, दो गुणा भी है ना,
24 प्रक्षेप नहीं है, 16 है,
16 प्रक्षेप,
यहाँ तीन गुणानी और ये तीन गुणानी, छह गुणानिया होगी,
छह गुणानी इंटू ये 16 का।
अभी इसमें कैसे लेना है, कितने प्रक्षेपों की एक प्रनिषेक बनता है, दो गुणहानि माइनस दो प्रक्षेप,
आठ में दो,
देखो हमारे पास छह गुणहानियां बनी, 16 की छह गुणहानियां बनी, दो गुणहानियों में से एक प्रक्षेप बना, सॉरी एक निषेक प्लस दो प्रक्षेप बाकी रहे, आवाज गई ना, हेलो, दो गुणहानी में, दो गुणहानी ने आठ, आठ में से दो प्रक्षेप कम यानी छह प्रक्षेप लिए, तो उसमें से एक निषेक बना। हमारे पास छह गुणहानियां बनी है, 16 की छह गुणहानियां बनी है, तो 16 की हमने दो गुणहानियों में से दो प्रक्षेप कम इतने लिए यानी छह प्रक्षेप लिए, तो हमें एक निषेक बना। दूसरे दो गुणहानी में से
दो प्लस एक
और एक निषेक बना, और यहाँ दो प्रक्षेप, यहाँ दो प्रक्षेप बाकी रहेगा। यहाँ तीसरी गुणहानी में, ये छह गुणहानी है ना, तीसरी दो गुणहानी लिए, उसमें से भी दो प्रक्षेप बचे और एक निषेक और मिला, तो तीन निषेक मिले, तीन निषेक मिले, इतनी तो बात है ना। 16 में तीन निषेक बने, और कितने कितने प्रक्षेप बाकी रहेंगे, यहाँ दो दो और दो, यहाँ उसकी वैल्यू उतनी होती है 66-96, पर रियल में उसकी वैल्यू कुछ कम रहती है। यहाँ तो ठीक है, हर एक में से दो दो प्रक्षेप मिले तो हमें छह प्रक्षेप मिले, तो हमें चार पूरे हो गए। हाँ, पेज नंबर अभी हम 89 पर ही, नहीं 90 पर देख रहे थे, फिर से हमारे पास कितना है, 16 × 24, तो छः छः का हम एक ग्रुप बनाते हैं, तो छः में एक निषेक, छः में एक निषेक, छः, तो चार निषेक पूरे मिलते हैं हमको। 16 की जो लंबी पीस निकाला हमने, यहाँ 16 और यहाँ 24, तो 16 इंटू 6 एक निषेक, 16 इंटू 6 दूसरा निषेक, 16 इंटू 6 तीसरा निषेक, 4 निषेक पूरे हो गए, तो हमारी वैल्यू बराबर फिट होती है। हाँ है ना, तो हमको 4 निषेक और मिलेंगे, यानी 12 और 4 16 निषेक बन जाएंगे, 16 उसमें बनते थे, उसका आभार काल उतना होगा। परंतु यहाँ यथार्थ में कुछ
अलग बात,
उस अलग बात होती, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया कि हर एक में से दो दो प्रक्षेप बाकी रहे और एक एक दो गुणहानी में एक निषेक बना और दो गुणहानी में एक निषेक बना और दो गुणहानी में एक निषेक बना और इतने प्रक्षेप रह गए, इस तरह से वो समझाना चाहते हैं। देखो तो 3 प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं, 8 प्रक्षेप कम दो गुणहानी मात्र प्रक्षेपों के होने पर भागहार में मिलाने के लिए चौथा प्रक्षेप अंक प्राप्त होता है, पर इतना है नहीं, इसलिए भागहार में मिलाने के लिए एक का असंख्यात्वा भाग अधिक 3 अंक प्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होता है। यानी वो तो यथार्थ में क्या होती है बस वो बात यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि प्रक्षेप और गुणहानि का प्रमाण एग्जैक्ट अगर लेते हैं तो ये उनकी गाथा यहाँ उपयोगी है। हमारे संदृष्टि में उसको कभी कुछ जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ 4 डायरेक्ट प्राप्त होते हैं निषेक एक्स्ट्रा, इसके लिए गाथा बताएंगे। वो गाथा भी हमारे उदाहरण में फिट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हाँ ऊपर फालिस लाग भैया नुवरी दरुवाण जतिया संखा तत्तिय पखे ऊणा गुणहानि रुवजन नठम, उसका अर्थ देखते हैं। फाली शलाकाओं से अधिक पूर्ववर्ती अंकों की जितनी संख्या हो गुणहानि के स्थानों को उत्पन्न करने के लिए उतने प्रक्षेप कम करने चाहिए। अभी हमने देखा ना यहाँ दो दो प्रक्षेप कम कर दिए हमने, गुणहानि में से दो गुणहानियों में से दो दो प्रक्षेप कम कर दिए, तो उसका उन्होंने रूल बनाए कि कितने प्रक्षेप कम करना है। अब दूसरा 7 नंबर, ओ जम्मि फालि संखे गुणहानि रूव संजुआ अहिया शुद्धारुवा अहिया फालि संखम्मि जुम्मम्मि। फालियों की ओज अर्थात विषम संख्या के होने पर, ये फालिया ने जो फाली फाड़ कर निकाली ना, एक प्रक्षेप की चौड़ाई से जितनी फालिया निकाली तो उसकी फाली कितनी दो निकली, के 32 में हमने दो फालिया बनाई, तो होने पर गुणहानि में एक मिलाने पर अधिक स्थान आता है, एक जोड़ने पर अधिक गुणहानि आती है, और फालियों की सम संख्या के होने पर शून्य जोड़ने पर अधिक गुणहानि आती है। यानी विषम संख्या हो तो क्या होगा और सम संख्या क्या होगा, ये उसका उन्होंने नियम बताया है। अब यहाँ हमारे इसमें तो कुछ हम घटित नहीं कर सकते उसको। 8 नंबर, तिल्लम दलेन गुणिता फालिसलागा हवन्ति सौवत्थ फालिम पड़ी जाने जो साहू पखे वरुवाणिम। 3 के आधे से गुणा करने पर सर्वत्र फाली की शलाकाएं होती है, 3 का आधा यानी 3 द्वितीयांश, और प्रत्येक फाली के प्रति प्रक्षेप रूपों को भले प्रकार जान लेना चाहिए। अभी वहां उन्होंने क्वेश्चन मार्क बनता है क्योंकि उसका उनको भी अर्थ शायद ख्याल में नहीं आया है या उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी एक एक फाली में कितने प्रक्षेप होते वो बराबर जान सकते हैं। हाँ फाली शाला का है ना, वो फाली की संख्या और फिर उसमें कितने कितने प्रक्षेप निकलते हैं उसके लिए सारे गाथाएं हैं। 9 नंबर, फाली संखम तिगुणीय अद्धम काऊन सगल रूवाणी पुनर्वि फाली ही गुणे विशेष संखान में दिफुडम। फालियों की संख्या को तिगुणा कर फिर आधा करने पर, यानी 3 द्वितीयांश ऊपर बताया था ना, जो समस्त अंक प्राप्त होते हैं उन्हें फिर भी फालियों की संख्या से गुणित करने पर स्पष्ट रूप से विशेषों की संख्या आती है।
यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया तो
वो भी संख्या उसका डिफरेंस वो आता है शायद
आता है कुछ
उसका डिफरेंस समझ में आता है। अब दसवां नंबर, रूण इच्छा गुणिदम पचयम सादिम गुणे उफाली ही तिन्ने गादित्युत्तर विशेष संखान में दिफुडम। उसका अर्थ नीचे लिखा है, एक कम इच्छा राशि से गुणित प्रचय को, प्रचय कहो या प्रक्षेप जो है, पुनः फालियों की संख्या से गुणित करने पर स्पष्ट रूप से तीन एक आदि तीनोत्तर विशेषों की संख्या आती है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। इस प्रकार तीन चार पांच आदि फालियों को अलग कर इच्छित योग स्थान के जीवों के प्रमाण से करते हुए यवमध्य जीव गुणहानि का अर्ध भाग बीतने तक ले जाना चाहिए। इन जो क्षेत्र को इमेजिन करके फाली फाड़ कर उसका एक एक निषेक बना तो उसमें से एक्स्ट्रा कितने निषेक बनेंगे, इस तरह से उसको सोचना है और कुछ नहीं। कितने प्रक्षेप डालने पर कितने निषेक होते हैं। हाँ आगे तो कहते ऐसे ही 128 फिर आगे बढ़ते 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 आगे चलो, इस तरह से कहते हैं। पुनः वहां के योग स्थान के जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य की चाहिए, सगद्रव्य है ना, सौवद्रव्य तदित्थ योग जीव प्रमाणे ना सगद्रव्य अभिरज्यति। सगद्रव्य अपहृत करने पर मैं चार गुणस्थानी वही अभी छानवे वाली बात कर रहे हैं। या सगद्रव्य ने उसी योगस्थान का अगर ऐसा हम देते सगय ने उसका अपना वहां के योगस्थान के जीवों के प्रमाण से
ये टोटल जीव की बात है।
एक मिनट, चार गुणहानि, हाँ सब टोटल द्रव्य को ही अपहृत करना पड़ेगा।
तो त्रस का जो टोटल द्रव्य अपने असंख्यात जगत से लिया लिए
ना, वहाँ का योग स्थान के जीवों के प्रमाण से, अभी वहाँ का योग स्थान हमने 96 था।
हाँ।
सब द्रव्य के अपहृत करने पर 1500 कितना दिया था, 36 अपहृत करने पर वह चार गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। चार गुणहानि कितने हैं, 16 यानी 1536 को 96 से भाग देने पर 16 आते हैं ना, ये कहना चाहते हैं। यथा वो समझाएंगे, अभी वो तो स्टेटमेंट किया, अभी उसको समझाने के तरीका बताएंगे। जीव यव मध्य से चूंकि वहां का योग निषेक करते उसमें जीवों की संख्या, उस योग स्थान में जीवों की संख्या, उसको योग निषेक कहा, चौथा भाग कम है। 128 का चौथा भाग कितना है,
32।
128 में उसका चौथा भाग 32 कम कर दो, कितना रह गया, 96। चौथा भाग कम है, अतः पूर्व क्षेत्र की चार फालियां करके, अभी हमने पहला इमेजिन किया था ना, एक बाजू 128 वर्टिकली, नहीं नहीं चार करना है, बत्तीस 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 बत्तीस, ये तीन गुनानिया प्रमाण बारह और ऐसा 128 था, है ना। अब इसको क्या करना है फिर से देखो, पूर्व क्षेत्र की चार फालिया करके, हमने पूर्व क्षेत्र कैसा लिखा था 128 और एक बाजू 12, उनमें से एक फाली को कम कर देने पर, अब ये 32 बाय 12, 32 बाय 12 के हमने तीन पीसेस रह गए, तीनों का मिलकर हमारी ये 96 हो गए, और यहाँ 32 गुना 12 ये इसको हमको एक फाली निकाली। अभी आगे देखो, उनमें से एक फाली को कम कर देने पर शेष क्षेत्र जीव व यव मध्य का, जीव यव मध्य कितना है 128, उसका 3/4 भाग प्रमाण चौड़ा यानी 96। देखो 128 में से 32 वाला एक पीस निकाल दिया, तो 32 32 के तीन पीस शीश रहे, उसका तो 96 एक बाजू रह गया, और दूसरी बाजू कितनी है 12 है, और तीन गुनाहानी प्रमाण लंबा स्थित होता है। अलग की हुई फाली भी यौमध्य के चतुर्थ भाग प्रमाण चौड़ी और तीन गुनाहानी आयाम वाली होती है, ये तो समझने में आसान है ना। पुनः इस निकाली हुई फाली के आयाम की ओर से तीन खंड करके, देखो अब इसके आयाम की ओर से तीन खंड किए, ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी 32, ये 32 और ये 32,
32 × 4,
यानी 32 × 4, 4, 4, यानी एक गुणहानि प्रमाण आयाम वाले उन्होंने
उसके खंड कर,
चार यानी एक गुणहानि, अगर गुणहानि में लिखना है तो हमको ये एक गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, गुणहानि के प्रमाण में अगर लिखना है तो ये 32 × 3 गुणानी, ये 32 3 गुणानी, ये 32 3 गुणानी रहेगी, और जो हमने पीस फाड़ कर निकाला एक बार जो 32 और ये 3 गुणानी है, अब इसको क्या करना, 32 एक गुणानी यहाँ लिखो, 32 दूसरी गुणानी यहाँ लिखो,
तीनों बाजू समान हो जाएगी।
एक मिनट, ये 32 1 2 3 तीन पीसेस अगर हम इसे एक के ऊपर एक मिलाते हैं तो ये 32 और एक गुणानी, एक गुणानी प्रमाण चौड़ी और 32 प्रमाण लंबी, ऐसे तीन पीसेस हमने इसमें जोड़ दिए,
स्क्वायर हो गया, स्क्वायर
नहीं 96 रह गए, और यहाँ तीन गुणहानियाँ थी उसमें एक गुणहानी बढ़ जाएगी, पहले तीन थी ना, तीन गुणहानी ऐसी थी चौड़ाई, और यहाँ ऊपर 128 था उसमें से 32 वाला पीस निकाला, 32 वाला पीस निकाल के उसको वर्टिकली रखा, नहीं समझे, ऐसे तीन पीसेस किए, यानी वो अभी ऐसे बने, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यहाँ से निकाला और यहाँ जोड़ दिया, आप थोड़ा टेलरिंग जानते हो तो ये समझ में आ जाएगा। ये तो अखंड था ना, एक 96 और तीन गुणानी ऐसा क्षेत्र था, ऊपर से 32 × 3 गुणानी वाला क्षेत्र निकाल दिया, और उसके ऐसे एक एक गुणहानी वाले एक एक पीस बनाए, और वो एक के नीचे एक ऐसे लगा लिए, तो ये 32, ये दूसरा 32, ये तीसरा 32, 96 तो ऐसे हुए, और उसकी चौड़ाई एक गुणहानी हुई। पहला क्षेत्र कैसा था 128 × 3 गुणहानी, और अब कैसा हुआ 96 × 4 गुणहानी,
सेम हो जाएगा,
वही हो गया ना, इस तरह से। वहाँ वो प्रक्षेपों की भाषा में वो दो प्रक्षेप निकाले, उसमें वो उन्होंने अपूर्णांकों में कैलकुलेट किया था, यहाँ हमारी संदृष्टि में फिर बैठता है, ख्याल में है ये बात, कैसे कहाँ से निकाला और क्या किया, वो साइड में लगा लिया, यहाँ का पैच निकाल कर वहां लगा लिया। हाँ 4 × 4, हाँ 4 × 4, ऐसे भी आता है ना, ये तीन गुणानिया थी, एक गुणानी यहाँ का आवार काल, जीव मध्य का आवार काल कितना था? तीन गुणानिया। यहाँ का आवार काल चार गुणानिया, बस इतना है। अब पेज नंबर है 92। देखो गुणानि प्रमाण लंबे इन तीनों ही खंडों को ग्रहण कर, वही पहली बात हो रही है, क्योंकि 32 और तीन गुणानि प्रमाण ऐसा थे, तो तीन गुणानि प्रमाण था, तो एक एक गुणानि इंटू 32 ऐसे तीन पीसेज बनाए, वर्टिकली एक के ऊपर एक लगाए, तो उसमें से एक पूरा प्रक्षेप तैयार, ये निषेक तैयार हुआ। दक्षिण दिशा में परिपाटी से पूर्वोक्त तीन खंडों में मिलाने पर यथा चार गुणानि प्रमाण लंबा और प्रकृत निषेक प्रमाण चौड़ा क्षेत्र होता है। ये समझ में आई ना बात? अतः चार गुणानि स्थानांतर काल से विवक्षित योग स्थान का द्रव्य अपहृत होता है, इसका इसका आवार काल है चार गुणानिया, ये उसका अर्थ होता है। विवक्षित द्रव्य अपहृत होता है ना, 1536 को चार गुणानियों से भाग देने पर 96 वो वाला निषेक तैयार हो जाता है। द्रव्य अपहृत होते उसको भाग देते हैं। देखो विवक्षित योग स्थान का द्रव्य अपहृत होता है, यानी उसका भागार अवहार जो है वो चार गुणहानि है। 96 का अवहार चार गुणहानि है, यानी चार गुणहानियों से 1536 को भाग देने पर 96 संख्या आती है, ये उसका अर्थ होता है। पांच गुणहानि मात्र भागार के उत्पन्न कराते समय, देखो अभी हमको यहाँ पांच गुणहानिये चाहिए, तो वहां का निषेक कितना होगा? ये उल्टा निकाल रहे हैं, इसको तीन गुणानी के बदले पांच गुणानियां करना, तो यहाँ का कम हो जाएगा ना, ये ऐसा लंबा था उसको ऐसा करना है, पांच गुणानी प्रमाण करना है, तो वो कितने का हो जाएगा निषेक वो बता रहे हैं। तो कहते पांच गुणानी मात्र भागहार के उत्पन्न कराते समय, यानी उन्होंने भागहार ही डायरेक्ट बताया और वहां का निषेक निकालना है। देखो क्या कहना चाहते हैं, 128 का भागहार कितना है? तीन गुणहानिया। अभी 96 का चार गुणहानिया, 128 का आधा करने जाओ, दूसरा निषेक, दूसरे गुणहानि का पहला निषेक 64, उसका भागहार कितना होगा? नहीं, यहाँ तीन था ना, 128 का कितना था? तीन, उसका 6 हो जाएगा। तो बीच वाले दो स्टेप बता रहे, चार गुणानिया वहां का निषेक कितने का होगा? 96 का होगा, और जहाँ पांच गुणानी भागार है वहां का निषेक कितना होगा वो निकालने का तरीका बता रहे। तो देखो पांच गुणानी मात्र भागार से भागार के उत्पन्न कराते समय ये वो मध्य के अढ़ाई खंड करके उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर शेष इच्छित क्षेत्र होता है।
ये पांच गुणानि से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा?
देखो यानी ये यहाँ 128 है
उसको पांच
और यहाँ तीन गुणानि थी, अभी हमको ये पांच गुणानि बनाने हैं, यानी एक और एक दो गुणहानी बनानी है, तो यहाँ कितने बचेंगे? 128 कितने कम हो गए, ये उनका कहना। अभी उसके लिए कहने वो मेथड बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, हमको पांच गुणहानी भागहार निकालना था। देखो पहले हमारा भागहार तीन गुणहानी था,
चार गुणहानी
उसके बदले चार गुणहानी कर रहे, तीन गुणहानी था तो वहाँ 128 था, तो चार गुणहानी में कितना, तो वो तो हमने निकाला 96, अभी पांच गुणहानी का निकालना है, उसके लिए क्या करना है वो बता रहे हैं। दूसरी भाषा में समझाती हूँ, यहाँ हमारी तीन गुणहानियां थी और ऐसा एक पूरा 128 का निषेक था, तो हमको चार गुणहानियां बनानी थी, तो चार गुणहानियां बनानी थी तो इसका चौथा भाग अलग निकालना,
अभी पांच गुणा नहीं बना।
हाँ, तो चौथा भाग निकाल कर वो यहाँ ऐसा ऐसा जोड़ दिया तो चार गुणहानियां मिलते हैं। अभी हमको पांच गुणहानियां चाहिए
तो और भाग निकालना पड़ेगा ना।
हाँ, तो इसमें से पहले में पहले उन्होंने क्या कहा, ढाई खंड करके, उसके अढ़ाई खंड कर दिए, एक दो और आधा। देखो पांच गुणहानी मात्र भागार के उत्पन्न कराते समय यव मध्य के अढ़ाई खंड करके, यव में अढ़ाई ने पांच द्वितीयांश करना, पांच द्वितीयांश यानी 128
इंटू फाइव
दो पंचमांश हो गए ना, ढाई खंड करना, ढाई से गुना करना करना, ढाई खंड करना, हाँ दो पंचमांश हो जाएंगे ना।
हाँ, दो पंचमांश।
उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर शेष इच्छित क्षेत्र होता है। अलग किए हुए एक खंड में से अढ़ाई वे भाग विस्तृत और दो गुणहानी आयत क्षेत्र को ग्रहण कर
बराबर है, दो गुणहानी पड़ेगी यहाँ पे।
देखो क्या करना, अढ़ाई में से एक खंड निकालना, यानी इसके पांच खंड करने पड़ेंगे और उसमें से दो निकालने पड़ेगी। दो पंचमांश किया था ना हमने,
नहीं दो खंड निकाले थे, पता रहे ना,
एक अढ़ाई खंड करना।
हाँ, और उसमें से निकाले कितने,
अढ़ाई खंड करके उसमें से एक खंड को निकालना।
अच्छा, 1.5 दे दिया और एक खंड को निकालना,
उसके पांच दो पंचमांश कर दिए ना।
हाँ,
और उसमें से एक खंड को निकाला,
उसमें से एक खंड निकाला।
128 के ढाई खंड करो, क्या करेंगे,
डिवाइडेड बाय दो पंच नहीं, 5/2, सो दो से
वही तो मैंने किया, दो पंचमांश से गुणा करो।
हाँ, दो पंचमांश,
दो पंचमांश यानी 28 × 2, 128 × 2 डिवाइडेड बाय 5,
256/5,
256/5 हो जाएगी।
उसमें से एक खंड निकाला।
हाँ, उसमें से एक खंड निकालो, है ना, ये एक खंड निकाला, तो एक खंड की वैल्यू डायरेक्ट निकालो ना, अभी पांचा पांचा 25, पांच एक पांच, एक पंचमांश, एकाउन पूर्णांक एक पंचमांश छोड़े, एक पीस निकाला उसका, एक खंड की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई।
हाँ, इसके पांच खंड किए, उसमें से दो खंड निकाल दिए।
हाँ, वही वही तो, पांच में से दो निकाले,
पांच में से दो निकाले तो तीन रह गए, तो दो की वैल्यू कितनी आएगी, 51।
वही तो, इसके पांच खंड में से दो निकल लिए ना।
हाँ, बराबर है,
तो इसके पांच करेंगे, उसमें से दो निकाले,
तो दो खंड के वैल्यू,
इसका दो पंचमांश हुआ ना। हाँ, ये
बराबर,
उसके पांच खंड करके उसमें से दो निकाले, बाकी दो निकाले। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, दो पंचमांश का अर्थ क्या होता है, देखो 128 इंटू उसके ढाई खंड करना, अढ़ाई से भाग देना, तो यानी दो पंचमांश से गुणा करना, यानी उसका पांचवा भाग करके उसमें से दो पीस लेना, तो 128 के पांच भाग करो, उसमें से दो पीसेस ले लो, ये उसका अर्थ होता है। अभी कल देखेंगे, परंतु अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अलग किए एक खंड में से अढ़ावी अढ़ाई वे भाग विस्तृत, यानी जितना है ये विस्तार का प्रमाण, दो पंचमांश वाला, और दो गुणहानी आयत क्षेत्र को ग्रहण कर। अब यहाँ तीन गुणहानी प्रमाण है ना, ये दो खंड उसकी ऐसी लंबाई कितनी है, दो गुण तीन गुणहानी है, उसमें से दो गुणहानियों को ले लिया, क्योंकि हमको यहाँ दो गुणहानियां बढ़ानी है। तो ये पांच पीसेस थे हमारे पास, हमने 128 के पांच फालियां बनाई, उसमें से दो फालियां ग्रहण की, तो उसका अर्थ है हमने अढ़ाईवा भाग लिया। अब उसमें से अढ़ाई वाल भाग वाला, यानी ये दो खंड है वो तीन गुणहानिया प्रमाण लंबे हैं, तो उसमें एक एक गुण, उसमें दो लेना गुणहानिया एक साथ, और एक गुणहानि अलग रखो, तो दो गुणहानि इधर और यहाँ दो खंड प्रमाण इस तरह से लिया, वो हमने यहाँ रखा, यहाँ एक गुणहानि यहाँ एक गुणहानि और ये दो खंड यहाँ तक आ गए तो इतना हो गया। अब यहाँ एक खंड बाकी रहा और यहाँ एक गुणहानि बाकी रहा, अब एक गुणहानि के और ऐसे दो पीसेस करो और यहाँ एक पीस बैठा दो और यहाँ एक पीस बैठा दो,
बराबर हो गया।
ये कल पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ। हाँ, आपको संसार कैसा करना, इधर से उधर कैसे फिट करना है वो बता रहे हैं। जावानी के जानते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो।
नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम।